ಮಿತ್ರಗಣ್ ನಮೋ ನಮಃ. ಆಗಚ್ಛಂತು ರೇಡಿಯೋ ಮಧುಬನಸ್ಯ ಸಹಕಾರ್ಯೇಣ ಸಂಸ್ಕೃತಂ ಪಠಂತು. ತೋ ಮಿತ್ರೋ, ಇಸ್ ಸಂಸ್ಕೃತ್ ಕಿ ಪಢಾಯಿ ಕೆ ಲಿಯೆ ಆಜ್ ಕಾ ಪಾಠ ಮೇನೆ ಚುನಾ ಹೈ ಏಕ್ ಸಂಸ್ಕೃತ್ ಕಿ ಜ್ಞಾನ ಸ್ಥಲಿ ಸೆ, ಜಿಸ್ಕಾ ನಾಮ ಹೈ ಭಾರತ್ ಸಂಧಾನ್ ಸಂಸ್ಕೃತ್ ಪ್ರವೇಶ್. ಆರ್ ಯೆ ಸಂಸ್ಕೃತ್ ಕಾ ಪಾಠ ವಹಾಂ ಪರ್ ತಯಾರ್ ಕಿಯಾ ಹೈ ಶ್ರೀ ಅನಿಲ್ ವಿದ್ಯಾಲಂಕಾರ್ ಜಿ ನೆ. तो उनका आभार प्रकट करते हुए हम आज का ये पाठ आरंभ करते हैं. इस पाठ में तुम देखोगे कि जितनी भी क्रियाएं हैं वो सारी आत्मनेपदी क्रियाएं हैं. हमने पहले भी चर्चा की है कि जब भी आत्मनेपदी क्रियाओं का स्मरण करो तो सबसे पहले वंदे शब्द का स्मरण करो, जो हम बार बार वंदे मातरम में सुनते हैं, तो फिर अगला सब कुछ परिचित लगने लगेगा. वंदे वंदा वहे वंदा महे, इस तरह से स्मरण करो. तो जैसे वंदे की क्रिया वंदे वंदा वहे वंदा महे, वंदसे वंदथे वंदध्वे, वंदते वंदेते वंदन्ते, उसी प्रकार से कुछ अन्य क्रियाओं को आज देखेंगे. और ये सारी की सारी लट लकार की क्रियाएं हैं, अर्थात वर्तमान काल की. आओ देखते हैं. वयमत्र संस्कृतम शिक्षामहे, अर्थात हम यहाँ संस्कृत पढ़ाते हैं. अत्र छात्राः विद्यां लभन्ते, यहाँ छात्र विद्या प्राप्त करते हैं. आवाम परिश्रमेण धनं लभावहे, यहाँ देखो आवाम अर्थात द्विवचन लिया गया है और क्रिया का रूप भी द्विवचन है. तो आवाम अर्थात हम दोनों परिश्रम पूर्वक धन को पाते हैं, लभावहे. यहां एक और मजेदार बात देखते हैं, परिश्रमेण धनम लभावहे, अर्थात परिश्रम के द्वारा परिश्रम से धन प्राप्त करते हैं. तो यहाँ पर परिश्रम शब्द की तृतीया की विभक्ति है. तो इस पाठ में हम कुछ ऐसे वाक्य और भी देखने वाले हैं, जैसे यहाँ पर परिश्रमेण यह तृतीया विभक्ति का शब्द आ गया, तो कुछ ऐसे ही वाक्य हम और भी देखेंगे. जैसे अई बालिके त्वम कथम कंपसे, ए लड़की तुम क्यों कांप रही हो. वह लड़की उत्तर देती है, अहम शीते न कंपे, मैं शीत के कारण सर्दी के कारण कांप रही हूँ. तो यहाँ पर फिर से शीते न तृतीया विभक्ति का शब्द आ गया. वायुना वृक्षाः कंपन्ते, वायु के कारण पेड़ कांपते हैं. तो यहाँ पर फिर वायुना तृतीया विभक्ति आ गई. क्रोधेन मनुष्यस्य हानि ही जायते, क्रोध से मनुष्य की हानि होती है. यहाँ क्रोधेन तृतीया विभक्ति आ गई. विद्या विनयेन शोभते, विद्या विनय के कारण ही शोभा देती है, अर्थात विद्यावान व्यक्ति को विनम्र भी होना चाहिए. यह तो बहुत जाना माना संस्कृत वचन है, विद्या विनयेन शोभते. यहाँ पर विनयेन तृतीया विभक्ति है. तो ये जो सारे शब्द हमने देखे, परिश्रमेण, शीतेन, विनयेन, क्रोधेन और वायुना, ये सारे तृतीया विभक्ति के शब्द हैं. अब आगे देखो, कुछ और वाक्य समझते हैं. तौ सदा देशस्य हिताय चेष्टेते, यहाँ पर तौ फिर से द्विवचन लिया गया है और चेष्टेते ये भी क्रिया में भी द्विवचन का प्रयोग हुआ है. तौ सदा देशस्य हिताय चेष्टेते, वे दोनों सदा देश के हित की चिंता करते हैं. अब देशस्य हिताय, देश का हित, देशस्य यहाँ पर कारक विभक्ति षष्ठी की लगी हुई है, अब इसी प्रकार कुछ और वाक्य देखते हैं जहां पर षष्ठी विभक्ति के शब्द आए हैं। क्रोधेन मनुष्यस्य हानि ही जायते, यहाँ पर मनुष्यस्य षष्ठी विभक्ति है। वयम दुर्जनानाम वचनम न मन्यामहे, हम लोग दुष्टों की बात, दुर्जनों की बात को नहीं मानते हैं। तो दुर्जनानाम, ये फिर से षष्ठी का कारक आ गया कि दुर्जनों की बात नहीं मानते हैं। तव सदा देशस्य हिताय चेष्टेते, शिष्याणाम सफलतया गुरवः मोदन्ते, शिष्यों की सफलता से गुरुजन प्रसन्न होते हैं, मुदित होते हैं। यहाँ शिष्याणाम षष्ठी की विभक्ति हो गई और सफलतया सफलता के कारण ये तृतीय की विभक्ति हो गई। ये जनाः योगस्य आसनानि कुर्वन्ति तेषाम आयुः वर्धते, यहाँ पर तेषाम आयुः वर्धते, उनकी आयु बढ़ती है। तो यहाँ पर तेषाम फिर से षष्ठी विभक्ति में है और योगस्य आसनानि कुर्वन्ति, तो योगस्य शब्द में भी षष्ठी की विभक्ति लगी है। ये जनाः योगस्य आसनानि कुर्वन्ति, जो जन योग के आसन करते हैं तेषाम आयुः वर्धते, उनकी आयु बढ़ती है। तो यहाँ कुर्वन्ति शब्द जो है वह परस्मैपदी क्रिया है, इसलिए उसका रूप कुर्वन्ति हो गया। लेकिन वर्धते, यह क्रिया आत्मनेपदी है, तो उसका रूप वर्धते हो गया। कुर्वन्ति परस्मैपदी क्रिया का उदाहरण है और वर्धते आत्मनेपदी क्रिया का उदाहरण है। वयम मित्रैः सह मंत्रयामहे, हम लोग मित्रों के साथ मंत्रणा करते हैं। तो मित्रों, हमने देखा कि किस प्रकार विद्यालंकार जी ने हमारे सामने ये 8-10 संस्कृत के वाक्य रखे हैं, जिनके द्वारा हमने आत्मनेपदी क्रियाओं के स्वरूप को देखा। कहीं कहीं उन्होंने द्विवचन के शब्द उपयोग में लाए हैं और इन वाक्यों में तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है, तृतीय विभक्ति को अच्छी तरह से समझाया है, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो इस प्रकार संस्कृत के एक एक शब्द को देख करके, सुन करके, हम जब उनका चिंतन करते हैं, उनका मनन करते हैं, अच्छा यहाँ ये विभक्ति लगी है, अच्छा इस क्रिया में यह परस्मैपदी रूप है, अच्छा इस क्रिया का यह लट लकार का रूप है, अच्छा यहाँ पर द्विवचन का प्रयोग हुआ है, अच्छा यहाँ पर इस लिंग का प्रयोग हुआ है। तो संज्ञा के लिए लिंग, वचन, क्रिया के स्वरूप के लिए काल और लकार, इन चीजों को अगर हम ध्यान पूर्वक देखते रहें तो संस्कृत भाषा को समझना बहुत ही सरल और एक फॉर्मूले के मुताबिक हो जाता है। इसलिए संस्कृत हमेशा सुनते रहो और पढ़ाई होती रहेगी। थोड़ा सा यदि हम संस्कृत बोलने का प्रयास करते रहेंगे और उसका चिंतन करते रहेंगे तो भी संस्कृत पढ़ने में सुविधा होती है। जैसे हम अहम शब्द से आरंभ करते हुए बहुत सारी क्रियाओं को सोच सकते हैं, अहम गच्छामि, अहम नमामि, अहम वदामि, अहम खादामि, अहम श्रुणोमि, ये सारे परस्मैपदी क्रियाओं के रूप हो गए। अहम वंदे, अहम मन्ये, ये सारे आत्मनेपदी क्रियाओं के स्वरूप हो गए। तो इस प्रकार हम संस्कृत को सीख सकते हैं। बस इसी के साथ हम आज का कार्यक्रम समाप्त करते हैं। तुम सुनते रहो रेडियो मधुबन, पढ़ते रहो संस्कृत और मुस्कुराते रहो। नमस्कार।